ಶಿವ ಸಾಧನ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ज्ञान की अंतरंग में स्थापना हुई या नहीं हुई, इसका परीक्षा और पहचान सिर्फ एक है कि मनुष्य को उस तरह के कार्य विचार जो उसने सुने थे उनके क्रियात्मक रूप देने के लिए उसमें साहस इकट्ठा हुआ कि नहीं. एक बात सुनने और समझने तक सीमित है, जैसे कि लोगों का ख्याल है कथा सुन लेनी चाहिए और गीता सुन लेनी चाहिए और रामायण पढ़ लेनी चाहिए और रामायण स्वादन चाहिए, बस खत्म हो गया, पुण्य हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, बात खत्म. बात ये नहीं है कि सारे के सारे ज्ञान का आविर्भाव इसलिए हुआ है कि आदमी उन विचारों को चरित्र के रूप में परिणत कर सके. भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान ही दिया नहीं, बल्कि अर्जुन को कर्म करने के लिए भी सिखाया. भगवान रामचंद्र जी अपने पैर पुजाने और अपनी आरती उतरवाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि लोगों में ये प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आए थे कि अनीति और अन्याय के विरुद्ध छोटे आदमियों को भी संघर्ष करना चाहिए. रावण के विरुद्ध उन्होंने ऋषि और बंधनों को इकट्ठा किया था. हनुमान जी को भी त्याग और सेवा की वृत्ति पैदा की थी. ये त्याग और सेवा की वृत्ति और लोक मंगल के लिए कुछ काम कर गुजरने की वृत्ति जब मनुष्य के भीतर पैदा हो जाए और हिम्मत पैदा हो जाए, एक उमंग पैदा हो जाए और एक ललक पैदा हो जाए, जानना चाहिए कि इसने जो कुछ ज्ञान सीखा था वो सार्थक हुआ. और अगर ऐसी ललक उत्पन्न न हो और आदमी सुनने भर का व्यसनी हो जाए, आज गीता कल गीता, आज गीता कल गीता, आज रामायण कल भागवत, इस तरीके से सुनता ही चला जाए, तो सिर्फ इसको एक तरह का मनोरंजक व्यसन भर कह सकते हैं. व्यसन कितनी तरह के होते हैं. किसी को बार बार तम्बाकू पीने का व्यसन होता है, किसी को ताश पीने से देखने का व्यसन होता है, किसी को सिनेमा देखने का, किसी को सत्संग करने का और सत्संग सुनने का ही व्यसन पैदा हो जाता है. और वो यहाँ बाबा जी की कहानी सुनी और पंडित जी पर भगवत जा जाके सुन मरी, ऐसे ही अपने समय का विक्षेप करता रहता है. अगर यहाँ तक कथा सत्संग सुनने भर की बात हो तो केवल उसको एक ज्ञान का व्यसन कहा जाए. दूसरे व्यसनों की अपेक्षा थोड़ा बहुत अच्छा है, ये थोड़े कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है. समय काटने की अपेक्षा उसने बुरे काम किए होते, जुआ खेला होता, उसकी अपेक्षा तो अच्छा ही है. उस ज्ञान की बात सुनता है, उसमें वो बुराई क्या है, पर कुछ उसका परिणाम भी नहीं. परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम उस समय होगा जब मनुष्य उन विचारों को इस ढंग से सुने और समझे कि क्या ये कार्य में लाए जाने लायक योग्य है. अगर ये कार्य में लाए जाने लायक योग्य है तो उस कार्य में लाए जाने की हिम्मत भी आदमी के भीतर होनी चाहिए. आत्मबल इसी को कहते हैं. आत्मबल का अर्थ यह है जिन विचारों को हम सही मानते हैं, उन सही मानने वाले कामों को हम करने के लिए हिम्मत इकट्ठी करें, उसके लिए त्याग इकट्ठा करें, उसके लिए पुरुषार्थ करें, इसके लिए मेहनत करें, और उसके रास्ते पर अगर विरोध आता है तो उसके विरोध को भी बर्दाश्त करें. इस तरह की आदमी के भीतर विचारों को कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, तब समझना चाहिए कि जो बीज बोया गया था उसका पत्ता और पल्लव पैदा होना शुरू हो गया. बीज बोया जाए उसका पत्ता पैदा ही न हो, अंकुर पैदा ही न हो, वृक्ष पैदा ही न हो, तो बीज बोने न बोने से क्या क्या फर्क पड़ा. कथा हमने सुनी, ज्ञान हमने सुना, पुस्तक हमने पढ़ी, लेकिन हमारे मन में वैसा काम करने की उमंग ही नहीं उत्पन्न हुई. तो ये मानना चाहिए कि हमने सिर्फ बीज बोया और बीज बोने के बाद वो पैदा नहीं हुआ, उगा नहीं, फला नहीं और फूला नहीं. फला फूला नहीं तो बोने का लाभ क्या रह गया. हमको जो अच्छे विचार और श्रेष्ठ विचार और जीवन को ऊंचा उठाने वाले विचार लोगों में विस्तृत करनी चाहिए और फैलानी चाहिए, जैसे कि अभी अभी कहा गया ज्ञान के माध्यम से जन साधारण को विचार करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए और ये उसको सिखाया जाना चाहिए कि जीवन श्रेष्ठ तरीके से कैसे जिया जा सकता है और समाज को सुव्यवस्थित कैसे बनाया जा सकता है. समाज अर्थात भगवान की पूजा कैसे की जा सकती है, इसका एक समग्र शिक्षण करने के लिए ज्ञान के प्रारंभ किया गया था. लेकिन ज्ञान के सिर्फ बीज बोने के बराबर है, और वो बीज पैदा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, इसकी परीक्षा ये है. और हमारा परिश्रम सफल हुआ कि नहीं, इसकी परीक्षा ये है कि आदमी को उन विचारों को कार्यान्वित करने के लिए सामर्थ्य पैदा हुई कि नहीं. सामर्थ्य पैदा होने का अर्थ ही उस ज्ञानी की सफलता है. ज्ञानी का दूसरा चरण रचनात्मक कार्यक्रमों के रूप में और सेवा साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है. जिन लोगों ने उन विचारों पर निष्ठा उत्पन्न कर ली है और ये ख्याल कर लिया है कि ठीक है और 24 घंटे हमारे लिए नहीं है और हमारी जिंदगी अपना पेट पालने के लिए नहीं है और बच्चों के लिए हम गुलाम नहीं है और समाज के लिए भी हमारा कुछ फर्ज हो जाता है, तो उनको समय इससे आगे निकालना चाहिए। ज्ञान के लिए 1 घंटा लगाने के लिए बात कही थी कि वो प्राथमिक बात थी, और मनुष्य को ज्यादा वक्त लगाना चाहिए। 8 घंटा आदमी कमाने के लिए खर्च करे ठीक है, मुनासिब है, पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने करने के लिए 8 घंटा अगर आदमी ठीक तरीके से करे। विदेशों में 8 घंटे दुकानें खुलती हैं, 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता, बाजार बिल्कुल 8 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं खुलता, और किसी मजदूर को दूसरे आदमी को 8 घंटे से ज्यादा काम करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर आदमी ज्यादा काम करेगा तो उसके दिमागी और शारीरिक स्थिति और सब खराब हो जाएगी और आदमी किसी काम का नहीं बच जाएगा। 8 घंटे आदमी जीविका कमाने के लिए रोटी कमाए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, और 8 घंटे में इतना काम हो सकता है अगर आदमी मुस्तैदी से काम करे कि मैं क्या कह सकता हूँ। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर इतना काम 8 घंटे में करता है, अमेरिकन मजदूर से 5 गुना ज्यादा काम करता है। ये सब कमीशन की रिपोर्ट है। मुस्तैदी से करता है, दिलचस्पी से करता है, मेहनत से करता है, 8 घंटे काम करे तो खिच खिच करके 12 घंटे और 16 घंटे काम करने की अपेक्षा ज्यादा काम हो सकता है। 8 घंटे मुस्तैदी के साथ में रोटी कमाने के लिए काम करें, सही, और 8 घंटे हम सोने और स्नान वगैरह करने के लिए काम में नित्यक्रम में खर्च करें, 6 घंटे 7 घंटे सोना काफी होना चाहिए, और 1 घंटे में नहाया धोया जा सकता है, टट्टी वगैरह जाया जा सकता है। 8 घंटे हो गए, 8 घंटे शरीर के लिए हो गए, 8 घंटा शरीर के लिए हो गए और 8 घंटा सोने के लिए और शरीर के लिए हो गए। अब इसके बाद में लगभग 8 घंटे बच जाते हैं आदमी के पास, जो काम करते हुए भी, रोटी कमाते हुए भी, गुजारा करते हुए भी आदमी लोक मंगल के लिए, समाज के लिए बहुत काम कर सकता है। और 8 घंटे इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किसी को नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है और बाबा जी होने की भी जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपनी रोटी कमाता हुआ इतना आदमी काम कर सकता है कि जो पूरे एक आदमी के लेवर के बराबर होता है। 8 घंटे बाकी रह गए ना, 8 घंटे देखिए सोने के, उठने के लिए और खाने के लिए, और 8 घंटा, 8 घंटा मजदूरी करने के लिए, 16 घंटे, 8 घंटे बचते हैं। चलिए 8 घंटे में से अभी और निकाल डालिए, 4 घंटे मोटर गश्ती के लिए मान लीजिए, इधर खड़े हो, यहाँ खड़े हो गए, ताश के लिए उधर चले गए, सामान खरीद रहे, 4 घंटे और भी निकाल दीजिए। चलिए मैं तो ये कहता हूँ, अब 4 घंटे तो आदमी निकाल सकता है, 4 घंटे के पास कौन ऐसा है जो नहीं निकाल सकता है? समय को उपयोग कहाँ सीखा लोगों ने, समय की कीमत कहाँ सीखी लोगों ने? यहाँ बैठ गए, वहाँ कर दिया, यहाँ चल दिए, यहाँ बैठे, यहाँ पढ़े, आदमी की आधी जिंदगी तो 3/4 जिंदगी तो ऐसे ही पूरे कबाड़ी की तरीके से खर्च हो जाती है। आदमी अगर समय का उपयोग करना सीखे और आलस्यहीन जीवन सीखे और 1-1 मिनट का ठीक तरीके से इस्तेमाल सीखे, तो हम लोग जितना काम करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कितना साहित्य लिखा, संगठन किया, क्या किया, क्या नहीं किया, लोग इसको जादू कहते हैं और चमत्कार और देवता की सिद्धि कहते हैं और क्या, मैं ये कहता हूँ ये देवता की कोई सिद्धि नहीं है, ये केवल इस बात की सिद्धि है कि समय को आदमी किस तरीके से खींच डाल सकता है और 1-1 मिनट के ऊपर हावी कैसे रह सकता है, और 1-1 मिनट को जो काम किया जाए उसको पूरे मनोयोग और दिलचस्पी के साथ करने के कारण वो थोड़े समय में कितना बेहतरीन किस्म का हो सकता है, बस यही चमत्कार है। ये मोटे सिद्धांत है, इन मोटे सिद्धांतों का कार्यान्वित कर लीजिए, आप भी ऐसी चमत्कारी बन सकते हैं ऐसे में, और जैसे मैंने विद्या प्राप्त कर ली और साहित्य इकट्ठा कर लिया, आप भी ऐसे बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। ये किसी के लिए न बंधन है, किसी के रोग, चमत्कार हर आदमी के लिए रुके पड़े ढीला, आलसी, निकम्मा, प्रमादी, यहाँ बैठा, वहां बैठा, दिन काटा, वहां वक्त काटा, ये जिंदगी को काटना बहुत ही बुरी बात। इसीलिए मैं ये निवेदन कर रहा था कि मनुष्य के पास जो 8 घंटे बच जाते हैं उसमें से 4 घंटा मुस्तैदी के साथ समाज की सेवा के लिए लगा दे, और 50 करोड़ मनुष्य 4 घंटा समय लगाने लगे तो 25 करोड़ लोग से भी इसमें पैदा हो जाते हैं, जो 25 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि विश्वभर की सेवा करने के लिए काफी है। 4 घंटे का वक्त, 4 घंटे का वक्त किस तरीके से सेवा कार्य में खर्च किया जाए, इसका एक छोटा सा उदाहरण अपनी सत्सूत्र योजना में है। कोई न कोई आदमी ये कसम खा ले कि मुझे समाज की सेवा करनी है, अपनी जीवात्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, ईश्वर की पूजा और क्या हो सकती है? समाज की सेवा के अलावा मैं पूछता हूँ, ईश्वर की सेवा क्या हो सकती है? कोई सेवा नहीं, और ईश्वर का भजन क्या हो सकता है? आत्मचिंतन, आत्मचिंतन और आत्मशोधन और आत्मनिर्माण और आत्मविकास के लिए आदमी एकांत में बैठता है, समझ में आ गया। लेकिन ईश्वर की खुशामद करना और ईश्वर के ऊपर बहुत सारे आवरण लाद देना, क्या मतलब है इससे? ईश्वर व्यक्ति नहीं, ईश्वर एक वृत्ति और भावना है, और वृत्ति और भावनाओं के परिपोषण करने के लिए आदमी को विश्व मानव की सेवा ही करनी पड़ेगी, और कोई तरीका उसका नहीं। विश्व मानव की सेवा करने के लिए आदमी को कोई कार्यक्रम नियत करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम इस समय आप कितना खर्च कर सकते हैं। पैसा आदमी के पास समय कोई हर्ज की बात नहीं है, आदमी के पास समय इतना कीमती है और भावना इतनी कीमती है, जो समय और भावना का ही अगर आदमी ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सके तो समाज के लिए इतना अनुदान दिया जा सकता है कि जो करोड़ों रुपए की मत से ज्यादा है। अगर हम लोग चाहें और हम पढ़े लिखे लोग चाहें तो अपने उस बचे हुए सेवा वाले समय में से क्या हम 2 घंटे रात्रि पाठशाला नहीं चला सकते? हाँ हम चला सकते हैं, चला सकते हैं। 2 घंटे हमारे पास फुर्सत का नहीं, हाँ है हमारे पास, अगर हम चाहें तो उसको लगा सकते हैं। एक आदमी एक रात्रि पाठशाला चलाने का समय ले, और जिस तरीके से हमारी योजनाओं के अंतर्गत केवल साक्षरता ही नहीं बल्कि साक्षरता के साथ विचार क्रांति और ज्ञान यज्ञ और सही ढंग से सोचने का तरीके सिखाने के लिए जो विद्यालय स्थापित किए गए हैं, उन विद्यालयों को अपने गली में, मोहल्ले में, कस्बे में, गांव में इकट्ठा किया जा सकता है, और छोटी उम्र से लेकर बड़े बूढ़ों तक इस मानी में सब बच्चे हैं। आजकल हमारे देश में सब बच्चे लोग रहते हैं, एक भी जवान आदमी नहीं है। जवान आदमी होते तो मजा आ जाता, और सब बिना पढ़े लोग रहते हैं, एक भी पढ़ा आदमी नहीं। पढ़े आदमी रहे होते तो उनको अकल नहीं होती क्या? जिंदगी के बारे में कोई समझ नहीं होती क्या? जिंदगी के बारे में जरा भी समझ नहीं, इनको पढ़ा लिखा कौन कहेगा? और जो आदमी प्रौढ़ ढंग से विचार करना नहीं जानते, और जिनको उत्कृष्ट जीवन जीने और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करने की भावना नहीं, इनको जवान आदमी कौन कहेगा? इनको बच्चा ही कहा जाएगा, बिना पढ़े ही कहा जाएगा। बिना पढ़े और बच्चे, छोटी उम्र के भी और बूढ़ी उम्र के भी, और बिना पढ़े भी और पढ़े लिखे भी, दोनों एक ही किस्म के लोगों में आते हैं। और इन लोगों को शिक्षित बनाने के लिए, विद्यावान बनाने के लिए हमको रात पाठशालाओं की बहुत सख्त जरूरत है, और हर जगह एक रात पाठशाला चलाई जानी चाहिए। कोई और हमारी पाठशाला में पढ़ने के लिए ना आए तो हमारी धर्मपत्नी तो शामिल हो सकती है, हमारे बच्चे तो शामिल हो सकते हैं, हमारे माँ बाप और भाई बच्चे तो शामिल हो सकते हैं। उन्हीं को पढ़ाएं, सिखाएं, समझाएं क्या हर्ज की बात है। और अपनी तो इसकी रात पाठशाला की योजना इतनी आकर्षक है कि उसमें बिना पढ़े और रूखे आदमियों को भी किस्से कहानियों को जोड़ दिया गया है, कथानकों को जोड़ दिया गया है, इतना सरस बना दिया गया है कि हम 2 घंटे क्या 6 घंटे भी कथा कहते रहे, कहानी कहते रहे और शिक्षा देते रहे, उनकी बात बताते रहे, तो आदमी चल नहीं सकता, हट नहीं सकता, तस से मस नहीं हो सकता, बैठा ही रहेगा। और ये कहेगा 2 घंटे कम ऐसा बहुत ज्यादा कुछ कहिए ना, क्या मजेदार बात कह रहे थे, कैसी कथा कहानियां सुना रहे थे हमको, सुनाइए ना। इस तरीके से एक कार्य है कि हमको रात पाठशालाओं के माध्यम से और पाठशालाओं के माध्यम से साक्षरता का प्रचार करना चाहिए, और साक्षरता के साथ साथ मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान करने वाले विचारणा को देने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सेवा नंबर एक। सेवा नंबर दो, जैसे कि अभी ज्ञान के अंतर्गत कहा गया था, हमको एक देव मंदिर हर जगह स्थापित करने चाहिए। देव मंदिर वो नहीं है जिनमें कि पत्थर की मूर्तियां रखी हुई है, देव मंदिर वो है जहाँ ज्ञान रखा हुआ है, ज्ञान जहाँ रखा हुआ है। मैं असली असली भगवान का मंदिर उसी को कहता हूँ। और ज्ञान मंदिरों में और मंदिरों में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक ही तरह के मंदिर को सम्मान कर सकता हूँ, और उसका नाम हो सकता है पुस्तकालय। और पुस्तकालय भी वो जहाँ के श्रेष्ठ किस्म की पुस्तकें रखे हुए हैं, दुनिया में संत और महात्मा का एसेंस निकाल करके, धर्म ग्रंथों का एसेंस निकाल करके, भगवान की विचारणा का एसेंस निकाल करके एक ही जिस लेबोरेटरी में रखा गया है, उसका नाम पुस्तकालय। रविन्द्रनाथ टैगोर अब नहीं है, पर उनकी कविताओं का कवित्व क्या हमारे लिए सुरक्षित नहीं है? मीराबाई अब जीवित नहीं है, पर क्या उनका कविता का कवित्व हमारे लिए सुरक्षित नहीं है? और सूरदास से लेकर के तुलसीदास तक, और वेदास से लेकर कवि तक, और सुकरात से लेकर के अफलातून तक, और ईसा मसीह से लेकर अमुक तक, जितने भी महामानव इस विश्व के हुए हैं, जिन्होंने विश्व मानव के लिए अनेक अनुदान दिए और एक से एक बढ़िया ज्ञान दिया, उन सारे के सारे ज्ञानों को एक जगह शीशी में रख करके जिस जगह के ऊपर रखा हुआ है उस देव मंदिर का नाम है पुस्तकालय। पुस्तकालय मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा है। पुस्तकालय मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा है। पुस्तकालय से बड़ा मंदिर हो ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि उसके अंदर जीवित ज्ञान रखा हुआ है, और ज्ञान ज्ञान मानव जाति की सबसे बड़ी संपदा है। और ज्ञान जिस जगह पर रखा हुआ है, उस जगह पर सारे के सारे ऋषि बैठे हुए हैं, महात्मा बैठे हुए हैं। रात को 2 बजे की जरूरत पड़ती है, हमको पुस्तकालय खोल लेते हैं, अपनी किताब खोल लेते हैं, और किताब सिराने रख लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हम रविन्द्रनाथ टैगोर से सत्संग कर रहे हैं, अब मरे हुए महात्मा गांधी से रात को 1 बजे सत्संग करना हो, 4 घंटे करना हो, उनकी पुस्तक खोल लीजिए और महात्मा गांधी से ऐसे ठीक 1 बजे बात शुरू कर दीजिए और 4 घंटे जारी रखिए। ये सत्संग की आवश्यकता सिर्फ पुस्तकालय पूरी कर सकते हैं और कोई पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए आवश्यकता इस बात की थी कि अभागा देश की बौद्धिक विकृतियां इस बुरी तरीके से उलझी हुई पड़ी हैं, उनके गांव गांव घर घर मोहल्ले मोहल्ले पुस्तकालय स्थापित किए जाए और पुस्तकालय स्थापित करने के लिए अगर पैसे की जरूरत हो तो संकलन किया जाए, और पैसे की जरूरत न हो तो फिर कम से कम अपना शारीरिक श्रम लेकर के घर घर जाया जाए, जैसे कि चल पुस्तकालय के बारे में बताया गया था। पुस्तकालय अगर कोई स्थापित करे उसकी महत्ता को लोगों को समझाए, जैसे गाय के दूध के बारे में कहा गया था, गाय के दूध का महत्व पहले समझाना पड़ेगा तब गाय की रक्षा हो। इसी प्रकार से ज्ञान का महत्व और ज्ञान की उपयोगिता लोगों को समझानी पड़ेगी, तब उसको लोग पसंद करेंगे। ये काम करने के लिए पुस्तकालय स्थापित किए जाए, ऐसे आदमी उस पर नियुक्त किए जाए जो लोगों को आकर्षण पैदा करे, जबरदस्ती थोपे, रुचि पैदा करे। ऐसे पुस्तकालय अगर स्थापित करना हर जगह की बहुत भारी देश को राष्ट्र को उठाने के लिए महती आवश्यकता है। इसके पश्चात सेवा के माध्यमों में क्या क्या नहीं आते, व्यायामशालाओं की बहुत बहुत आवश्यकता है। हमारे गांव गांव घर घर मोहल्ले मोहल्ले में आदमी काहिल होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, आलसी होता चला जाता है। अब तो घरों में बाथरूम कम्बाइन करने लगे, आदमी को इतनी दम नहीं रही कि घर में से कमरे में से उठे, जिसमें पूजा करता है, जिसमें किस्त पड़ता है, उससे बाहर भी पेशाब कर ले, पेशाब भी उसी चारपाई पे करना चाहता है। इतना आलसी हो गया है, इतना शरीर के ढीला हो गया है कि अगर ये आलस्य शरीर का आदमी के अंदर बना रहा तो थोड़े दिनों में आदमी को रोटी चबाने, रोटी खाने की मशीनें रखनी पड़ेंगी, रोटी चबी चबाई पेट में डालनी पड़ेगी और टट्टी करने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी, जो आदमी चार पाए पड़ा पड़ा टट्टी कर लिया करे बैठ सो रह करे। आदमी कैसा ढीठ और आलसी होता चला जा रहा है। इस आलसी आदमी को प्रसन्नी और उद्योगी बनाने के लिए और व्यायामशालाओं के खेलकूद की बात को फिर से जागृत करना पड़ेगा, स्फूर्तिवान आदमी को बनाना पड़ेगा और लड़ाकू और मजबूत आदमी बनाना पड़ेगा। इसके लिए ये कार्य का शिक्षण करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता है उन संस्थाओं का नाम व्यायामशाला क्या नहीं हो सकता? हाँ, व्यायामशाला। इसमें जरूरी नहीं है कि दंड बैठक ही लगाई जाए, अनेक तरह के खेल कूद हो सकते हैं, बच्चों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग आसन, क्योंकि किस्म की बहुत सी खेल बहुत सी चीजें हो सकती है, और मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी कवायद जैसी बात हो सकती है, लाठी चलाने की बात हो सकती है, हथियार चलाने की बात हो सकती है, इससे गुंडागर्दी का दमन होगा। गुंडे और बदमाश इसलिए बढ़ते हुए चले जाते हैं कि आदमी को उनको ये मालूम पड़ता है कि हमारा कोई मुकाबला करने वाले नहीं है और बहादुर लोग दुनिया में नहीं है, सारे के सारे गांव में कायर और नपुंसक लोग रहते हैं और सब लोग बीमार और बेकार लोग रहते हैं, इसलिए एक गांव में 2 गुंडे हो जाते हैं और सारे भले आदमी की नाक में नकेल डाल देते हैं और सारे सारे गाँव वालों को उल्लू बना देते हैं, सारे गाँव पे हावी हो जाते हैं। जानते हैं कायर लोग हैं, नपुंसक लोग हैं, कायर कमजोर लोग हैं, और ये क्या नाम है, क्या क्या लोग हैं, इनमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल बेदम के आदमी। अगर आदमी को यह मालूम पड़ा कि दमदार आदमी भी रहते हैं और किसी किसी को छेड़ा गया तो हमारी भी खबर ली जा सकती है, फिर दुनिया में जो आधे अपराध और आधे पाप और आधी गुंडागर्दी अपने आप ही दूर हो सकती है। व्यायामशालाएं ये काम पूरा कर सकते हैं, गुंडागर्दी पर रोक कर सकते हैं। आदमी की हिम्मत जो नष्ट हो गई है और शारीरिक क्षमता जो नष्ट हो गई है और आदमी कमजोर और काहिल हो गया है, इन सारे के सारे व्यक्तियों को और जो आदमी बीमार पड़ता चला जाता है अपनी काहली कमजोरी की वजह से, इनको नियंत्रण करने के लिए, दूर करने के लिए व्यायामशाला का बहुत महत्व है। वहाँ केवल अखाड़ा ही न हो, दंड पेड़ ही नहीं सिखाया जाए, बल्कि स्वास्थ्य का शिक्षण और स्वास्थ्य की रक्षा और आदमी की हिम्मत और मनोबल की वृद्धि, इसके लिए क्लास भी चलाए जाते हैं और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए हर एक के लिए शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के अनेक तरह के शिक्षण भी दिए जाते हैं। अखाड़े भी हों, खेलकूद भी हों, खेलकूदों की प्रतियोगिताएं हों, दंगल हों, इस तरह की एक साधन सामग्री ऐसी संस्थाएं अगर गांव-गांव में स्थापित की जा सके तो मजा आ जाए। शिक्षा के बारे में मैंने कहा और व्यायामों के बारे में मैंने कहा, एक और भी बात अपने अपने देश में आ जाती है और वो अन्न की समस्या और खाद्य पदार्थों की समस्या है और भोजन की समस्या है। अपने देश में से पेड़ पौधे और हरियाली दिन दिन कम होती चली जाती है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि वर्षा कम हो रही है, पेड़ पेड़ का कटते जाएंगे, वर्षा घटती जाएगी। एक मोटा वैज्ञानिक सिद्धांत, आप पेड़ों को काट डालिए, जैसलमेर जैसे प्राण, जहाँ की पेड़ पौधे नहीं होते हैं वर्षा नहीं होती। पेड़ों में वो आकर्षण है कि वर्षा के बादलों को खींच करके ले आती है और पेड़ों में वो आकर्षण है कि वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य संवर्धन करते हैं। पेड़ भी मनुष्य के सहयोगी हैं। पेड़ों को लगाया जा सकता है। एक बिहार जिले में हजारीबाग जिला है, वहाँ का एक किसान, किसी ने ये कह दिया कि तुम बाग लगा दो संतान हो जाएगी, बस उसने 100 पेड़ आम के लगाए और आम के पौधे बढ़के हो गए और जब उसके नीचे छाया आने लगी और बच्चे फल खाने लगे और सारे गांव को आम मिलने लगे तो उसको बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने कहा बेटा हुआ तो क्या, हुआ तो क्या, आम का लगाना और आम के बगीचे का लगाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बस उसके दिमाग पर ऐसी इच्छा और ऐसी तरंग उत्पन्न हुई कि सारे जिले के लिए खड़ा हो गया और गांव गांव जा करके वो बिना पढ़ा किसान और गरीब किसान ये कहने लगा मैंने आम का बगीचा लगाया, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे गांव के सब बच्चों को बड़ा आनंद आया और वहाँ खेलने को जगह मिल जाती है और उसकी ठंडक में सारे गांव के लोग जा बैठते हैं, आपको भी आम का बगीचा लगाना चाहिए। लोगों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया तो स्वयं लगाने लगा, स्वयं पानी लगाने लगा, गाँव के लोग फिर उत्साहित हो गए। उसने किया और जब थोड़ा संभालने लगे तो वहां से दूध चल के दूसरा गाँव लगाया गया, 1000 बाग, 1000 आम के बाग लगाए हैं उसने बिहार के एक जिले में, उसका नाम हजारी बाग हो गया। हजारी बाग जिला इस बात का सबूत, इस बात की परंपरा लिए बैठा है, किसी जमाने में एक ही किसान ने अपनी जिंदगी में जगह जगह प्रोत्साहन देकर के, सहयोग देकर के, लोगों के साथ मिलजुल करके और लोगों को एक आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित करके उस बिहार के उस जिले में 1000 आम के बाग लगवाए थे और सारे के सारे जिले को हरा भरा कर दिया था और फल फूलों से स्वस्थ जीवन जीने के लिए कर दिया था, हरा भरा कर दिया था। आदमी के मन में सेवा की बुद्धि और सेवा की वृत्ति आए तो बिना पढ़ा किसान तक ये काम कर सकता है कि जहाँ जंगल पड़े हुए हैं, जहाँ खाली जगह पड़ी हुई है, या वीरान जगह पड़ी हुई है, वहाँ फल लगवाए और फलों की भी गुंजाइश न हो और पेड़ों की गुंजाइश न हो तो हम अपने मकान में और अपने आंगन में साग वाटिका लगा सकते हैं और अपने देश की खाद्य समस्या को हल करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। मिट्टी की नादें, फूटे हुए घड़े, गमले, लकड़ी की पेटियां कहीं भी रखी जा सकती है, पक्के मकानों में भी जहाँ खेती बाड़ी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लखनऊ में एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपनी पक्के मकान की छत के ऊपर 20 लकड़ी की पेटियां रख ली और उसमें मिट्टी और गोबर मिला के भर दिया और उसमें साग भाजी बोई तो 6 महीने के लिए पूरी साग भाजी 19 से 20 पेटियों में से पैदा करते रहे। कहते थे हमारे कुटुंब में 3-4 रुपए का रोज साग आता था और हम 3-4 रुपए की बचत कर लेते हैं। 3-4 रुपए की बचत के मतलब 100 रुपया महीना होता है और 100 रुपये महीना अगर उनको 7-8 महीने उनके साग भाजी देती रही तो 700-800 रुपये कमा लिया और साग की और अन्न की जो देश की भी कमी है उसकी बचत कर ली और पौष्टिक आहार प्राप्त कर लिया। ये भी एक सेवा है। अपने गांव में बच्चों के तरीके से, पशु पक्षियों के तरीके से अगर फल और फूल लगे और साग लगे तो ये क्या बुरा है। जिनके घरों के आसपास देहात में रहते हैं, थोड़ी जमीन पड़ी होती है और देहातों में अक्सर थोड़ी बहुत जमीन खाली रहती है, उसमें साग लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, यानी क्या लगा सकते हैं, अपने घर की साग भाजी की समस्या हल कर सकते हैं और न केवल बचत कर सकते हैं बल्कि अपने शरीर के लिए अच्छा खाद्य और आवश्यक खाद्य भी मुहैया कर सकते हैं। साग लगाने वाली बात और फूल लगाने वाली बात, हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रकृति के बालक जो हमको उल्लास दे सकते हैं, हमको खुशबू दे सकते हैं और हमारी आंखों को बल दे सकते हैं, ये फूलों की भी आवश्यकता है। फूल को पैदा करने के लिए हम अपने आंगन में गमले लगाएं, पड़ोस में लगाएं, फूलों के बीज इकट्ठे करें, गांव में जाएं, लोगों से कहें ये फूलों का बीज आप पैसे दे खरीद लीजिए, पैकेट हम बनाएं और फूल बोने की व्यवस्था बनाएं और साग भाजी के बीज इकट्ठे कर लें, बिना कीमत के दें अथवा कीमत से दें। लोगों से कहें आप बैंगन क्यों नहीं लगा लेते, घर में आपकी जगह है, हम आपको मदद करते हैं, आपको लगाना सिखाई जाती है और दो आने का पैकेट है बैंगन का, ये आपके के लिए 2 महीने के लिए काफी होगा, आप लगा लीजिए ना, एक आधी का टमाटर है लीजिए, बीज ले लीजिए ना, लगाइए ना। इस तरीके से कुछ आदमी छोटे छोटे काम है सेवा के, अगर हम इन कामों को भी करना शुरू करें तब हमारे देश में कितनी फूल, कितने फल, कितनी हरियाली और कितनी छाया और कितनी लकड़ी पैदा हो सकती है और मनुष्यों में अपने भाई और बहन जो फूल पौधों के तरीके से हैं उनको बढ़ाने के लिए बहुत काम किया जा सकता है। जैसा काम बताया, जैसे काम को क्या आदमी नहीं कर सकता, हाँ आदमी कर सकता है। कोऑपरेटिव स्टोर अब अगले समय की एक महत्व आवश्यकता सिद्ध हो गई। व्यापारी अन्य वर्गों के तरीके से बेईमान और मुनाफाखोर होते हुए चला जाता है, वो अब समाज के हित के लिए व्यापार नहीं करता, अपने हित के लिए काम करता है और हर क्षेत्र में बुरी तरीके से बेईमानी पैदा होती चली जा रही है, खासतौर से खाद्य पदार्थों के संबंध में। जीवन मरण का प्रश्न है, हम मसाले खरीदते हैं, लाल मिर्च खरीदते हैं गेहूं मिला हुआ, हल्दी खरीदते हैं पीली मिट्टी मिली हुई, धनिया खरीदते हैं गधे की लीज मिली हुई, जीरा खरीदते हैं बुहारी की सीखों का वो जो छिलका होता है ये मिला हुआ, हर चीज दवा दारू से लेकर कोई चीज हमको ठीक मिल नहीं पाती। दूध हमको सही मिल नहीं पाता, घी हमको सही मिल नहीं पाता, तेल हमको सही मिल नहीं पाता, अच्छा चावल और अच्छा गेहूं हमको मिल नहीं पाता, खाद्य पदार्थ तक नहीं मिल पाते, अन्य चीजों की तो बात क्या कही जाए। और जो चीजें मिलती हैं वो घटिया किस्म की मिलती है, साबुन खरीद के लाई है उसकी नकल ही पैदा हो गई, सल्लार साबुन की नकल ले आई, जितना असली सल्लार साबुन मिलता है उससे चौगुना नकली सल्लार साबुन मिलता है, साबुन ले आइए असली टिक्की आपको कहीं शायद मिले, नकली से बाजार भरा हुआ पड़ा है नकली दवाएं। दुकानदार का इंटरेस्ट इस बात में रहता है कि जहाँ से नकली चीजें मिले, सस्ती चीजें मिले वहां से ले लें और ग्राहक को भेज दें ताकि वो मालदार जल्दी हो जाए, रुपये वाला जल्दी हो जाए, लोगों का नुकसान हो तो चाहे न हो। अब इस दुकानदार की बेईमानी के वक्ति पर अंकुश ही करना पड़ेगा और इसका समाधान ही करना पड़ेगा और अपने खाद्य पदार्थों के लिए स्वावलंबी ही होना पड़ेगा। ये कार्य कोऑपरेटिव स्टोरों के द्वारा हर जगह किया जा सकता है। लोग गांव के लोग से एक सहकारी समितियां बनाएं और इन सहकारी समितियों के माध्यम से इस तरह की व्यवस्था करें कि अच्छी और स्वच्छ वस्तुएं गांव वालों की देखभाल में और पंचायत के प्रधान और उसकी कमेटी और अध्यक्षों की देखभाल में बनाई जाए और एक ऐसा ईमानदार आदमी नियुक्त किया जाए जो अच्छी चीजें और सही चीजें और ठीक और मुनासिब दाम पर बेचता रहे। अच्छी चीजों की गारंटी तो हुई, अच्छी चीजों की गारंटी और हो गई तो मनुष्य के जीवन को वृद्धि करने के लिए और लोग रखने के लिए एक रास्ता तो खुला। जीवन उपयोगी अन्य चीजें जो कभी ब्लैक में चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं, कभी व्यापारी समय देकर के चौगुने दाम कर लेता है, कभी क्या कर देता है, कभी खराब चीजों को सस्ते दाम बेच देता है, ये सारी की सारी मुसीबतों से दूर पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कोऑपरेटिव स्टोरों की आवश्यकता है। अगले दिनों में व्यापार का जो विकास होने वाला है सहकारिता के माध्यम से होगा, समाज अगर विकसित होना है तो सहकारिता के माध्यम से होगा, समाजवाद आएगा तो सहकारिता के माध्यम से आएगा। सहकारिता की वृत्तियों को विकसित करने के लिए हमको छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटियां और कोऑपरेटिव स्टोर खोलने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ मदद देती है, लोन देती है, इससे पैसे की व्यवस्था और भी सरल हो जाती है और उन कामों को बढ़ाया जाना और भी सरल हो जाता है। हम कोलकाता में कोऑपरेटिव स्टोरों का प्रबंध करना चाहिए और कोऑपरेटिव व्यवस्था को बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थों से प्रारंभ करके कपड़े लत्ते तक और गांव वालों की अन्य चीजों को आवश्यकताओं को पूरा करने वाली दवा दारू तक और सुई धागे से लेकर के साबुन और तेल तक उस कोऑपरेटिव स्टोर में जमा करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक आदमी का खर्चा भी निकलता रहे और हर चीज हर आदमी को आवश्यकता पूर्ति भी होती रहे और परस्पर सहयोग करने का मादा और परस्पर सहयोग करने की वृत्ति विकसित होती रहे। क्या ऐसे कोऑपरेटिव स्टोर आवश्यक नहीं है? हाँ, ऐसे कोऑपरेटिव स्टोरों की बड़ी आवश्यकता है और वो सारे के सारे जगह जगह कोऑपरेटिव स्टोर खुलने लगे तो मजा आ गया। इसी के साथ साथ में एक और भी चीज सेवा के लिए आती है और वो है ग्रामोद्योग कुटीर उद्योग। हम ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों की स्थापना करके अपने गांव वालों की और नगर वालों की और बेकार आदमियों के लिए आजीविका दिवस की उनकी खुशहाली में सहायक हो सकते हैं और इस तरह के गृह उद्योगों को चलाए जाने की बहुत कुछ गुंजाइश है। शेखावाटी डिवीजन और नवरगढ़ डिवीजन के दो उद्योगों की मुझे याद आती है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी कलकत्ता ने एक दो उद्योग उस क्षेत्र में फैला दिए हैं। एक उद्योग है पापड़ तैयार करना और दूसरा उद्योग है जनेऊ तैयार करना। पापड़ों का मारवाड़ी समाज में खाए जाने का बड़ा रिवाज है और कलकत्ते में मारवाड़ियों की संख्या भी ज्यादा है, तो वो पापड़ का एक गृह उद्योग ठीक ढंग से विकसित करके और सारे के सारे जिले को जिनमें विधवाएं भी शामिल है, बच्चाएं भी शामिल है, कुमारी कन्याएं भी शामिल है, बुढ़िया भी शामिल है, हर एक को थोड़ा काम करने का मौका मिल जाता है, हर एक को थोड़ी आमदनी मिल जाती है और थोड़ी थोड़ी आमदनी मिला करके हर आदमी में स्वावलंबन की भावना पैदा होती है, दो पैसे जेब में होते हैं तो वक्त जरूर पर दान पुण्य करने से लेकर के खर्च करने तक की और अपने स्वास्थ्य संवर्धन से लेके घूमने फिरने मनोरंजन तक के लिए गुंजाइश मिल जाती है, उनको खुशहाली पैदा होती है, स्वावलंबन पैदा होता है, कलात्मक दृष्टि का विकास होता है और हरामखोरी से बचाव करने की वृत्ति पैदा होती है। इस तरह की पापड़ के उद्योग बना दिए। जनेऊ लोग पहनते ही हैं, हाथ से कटा हुआ सूत और हाथ से बना हुआ सूत उसके द्वारा हाथ से गांठ लगा के और जनेऊ बनाया जाए तो उससे कितने आदमियों को काम मिल सकता है। मैंने एक नमूने की बात बताई। हिंदुस्तान को में उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया ही जाना चाहिए। बड़े 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 मिल और ऑटोमेटिक मशीनें जो हजारों मनुष्यों के श्रम को खा जाती हैं, उनका मुकाबला करने में मालूम पड़ता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कुटीर उद्योग के लिए किया जाए तो उनके साथ में जो रुपए की ब्याज और मेंटेनेंस और मशीनों की टूट फूट और गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह लगा के जो जो उनको खर्चा आता है, हम कुटीर उद्योग को उनके मुकाबले में भी खड़ा कर सकते। हमारे एक कपड़े देहात में बनाए जाने लगे तो मशीनों के मुकाबले में सस्ते बन सकते हैं। इस तरह की चीजें हर जगह पैदा की जा सकती हैं। प्रतियोगिताएं चालू करके हम हर जगह बहुत सा काम कर सकते हैं। वाद विवाद की प्रतियोगिता, संगीत की प्रतियोगिता, खेलकूदों की प्रतियोगिता, बच्चों को स्वस्थ रखने की प्रतियोगिता, पशु किसका अच्छा रोग है और कौन ज्यादा दूध देता है इसकी प्रतियोगिता, अनेक तरह की प्रतियोगिताएं मनुष्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करती हैं और एक सम्मेलन और एक उत्सव और एक आयोजन का भाव पैदा करती हैं। लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तमाशा देखते हैं, लेकिन उसमें से अपने को अच्छा साबित करने वाले लोग ये भी करते रहते हैं। ये भी एक बड़ी समाज की सेवा है कि हम अच्छे काम करने के लिए प्रतियोगिता है उसके पुरस्कार देने के मेले तो दंगल लगाए और आदमियों के भीतर उत्साह पैदा करें कि हमको बढ़ चढ़ करके जीवन को विकसित करने वाले कार्य करने चाहिए। इसी प्रकार से संगीत और कला और अभिनय ये भी एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य है। इससे मनुष्य के अंतरंग को छुआ जा सकता है। हर गांव में संगीत जानने वाले होते हैं। उन संगीत जानने वाले लोगों को वो चीजें दी जाए जो आज के युग के लिए आवश्यक है। उन बेचारों के पास कोई विचार नहीं है, संगीत गाते हैं, जो किसी ने सिखा दिया वो सीख गए। कीर्तन करना सिखा दिया तो सीख गए। पान खाओ फूल खाओ और खाओ मेवा जगदीश देव। अरे तो पान फूल कहाँ से खाए बाबा, पान नहीं 10 पैसे का आता है, मेवा खाओ कहाँ से खाए थे, श्रमे से मेवा खाए 16 रुपया किलो बिकती है, मेवा खाओ गणेश जी तो पैसे होंगे तो खा लेंगे, तो लड्डू खिला जाए, नहीं खाओ अपने पैसे से खाओ, खाए बेकार की बात, खराब करता है अपना दूसरों का। इस तरीके से बेसर पैर की लोग गाना गाते रहते हैं गाने की हविष को पूरा करने के लिए, और वही राधा श्री कृष्ण के गीत गाते रहते हैं कामुकता भड़काने वाले। इनके स्थान पर और हम गायकों को इस तरह के विचार दें जो मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाते हो और लोक सेवा की वृत्ति उत्पन्न करते हो तो मजा आ जाए। गांव गांव जाना चाहिए और ऐसे संगीत संगीत को एक एक संगबद्ध करना चाहिए और एक ऐसी मंडलियां बनानी चाहिए और उनका ऐसा नियंत्रण किया जाना चाहिए कि उनको नए नए गाने और नई नई बात बने। संगीत का शौक पैदा किया जाए, नाट्य और अभिनय का शौक पैदा किया जाए। अब तो आदमी जो भागता है सिनेमा के लिए भागता है, सिनेमा के अलावा कोई मनोरंजन रहा ही नहीं। अगर हम चाहें तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें मनोरंजन का भी पुट दिया हुआ हो और शिक्षा का भी पुट दिया गया हो, छोटे स्तर पर एकांकी नाटक खेले जा सकते हैं, छोटी छोटी ड्रामा कमेटियां बन सकती हैं, लीला और अभिनय का दिया जा सकता है। इससे आदमी को अपनी कोमल भावनाओं का विकास करने का मौका भी मिलता है, मनोरंजन के लिए भी गुंजाइश आती है और लोक शिक्षण की व्यवस्था भी बन जाती है। ये सब आसानी से किया जा सकता है। गंदगी गंदगी एक अभिशाप है हमारे समाज का, और अभिशाप ही नहीं है राष्ट्रीय अपव्यय भी है। मल और मूत्र की समस्या इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान जैसे देश देश में मल और मूत्र का कोई उपयोग नहीं होता। जापान ने अपने देश में खाद की समस्या का मनुष्य के मल को इस्तेमाल करके किया है। आदमी की टट्टी का एक थोड़ा बर्बाद जापान में नहीं हो गया था और आदमी की टट्टी और पेशाब को बिल्कुल खाद के रूप में बदल दिया जाता है और वहाँ फर्टिलाइजर कारखानों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खाद की समस्या, मनुष्यों का मल इतना ज्यादा है, अब पशुओं से भी ज्यादा मनुष्य है, मनुष्यों से पशु कम है। मनुष्यों का मल और पशुओं का मल जो कि देहात में जहां तहां फैला फैलता रहता है, बिखरता फैलता रहता है, उससे कोई उपयोग नहीं होता और कोई लाभ नहीं होता। उस बिना उपयोगी और बिना लाभ के पदार्थ को यदि हम लाभ का बढ़ा सकते हैं तो देश में सोना फैला सकते हैं। यदि हम गांव की सफाई रखने लगे तो सफाई से 2 फायदे होंगे। स्वास्थ्य जो लोग खराब होते हैं वो नहीं होंगे। एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था, उसने वहां की अपनी डायरी में लिखा है और प्रकाशित हुई है। उसने ये लिखा है, मैं जब नाक में देखता रहता हूँ कि बदबू किधर से आती है, जंगल में खड़ा होकर देखता हूँ मुझे किसी गांव जाना है, तो मैं देखता हूँ कि गंध और बदबू टट्टी कहाँ से आती है, जर को बदबू आती है, उसी दिशा में चल देता हूँ और मुझे गांव मिल जाता है। गांव का अर्थ बदबू का केंद्र और होना ही चाहिए। जहाँ पेशाब और टट्टी की निकासी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और जहाँ मल और टट्टी इतने आदमी गांव में रहते हैं, उसके लिए कोई खर्च करने का और लगाने का व्यवस्था नहीं, आखिर वहां बदबू न आएगी तो क्या होगा? बीमारी न होगी तो वहां क्या होगा? गंदगी न होगी तो वहां क्या होगा? लोग मलिनता के आदि न होंगे तो वहां क्या होगा? आज हमारा ग्रामीण जीवन ऐसा ही भ्रष्ट जीवन है, इसमें गंदगी रोम रोम में समा गई है। पशु भी वहीं रहते हैं, आदमी भी वहीं रहते हैं, बच्चे भी टट्टी वहीं करते रहते हैं, किवाड़े बंद कर लेते हैं और जाने सबके लिए गलाजत फैलती रहती है। इस गंदगी के विरुद्ध हमको लोहा रहना चाहिए। सभ्यता जहाँ से शुरू होती है वो सफाई से शुरू होती है। अगर जो आदमी साफ कपड़े नहीं पहन सकता उसको मानना चाहिए सभ्य नहीं है, और जिसका मकान साफ नहीं है शायद सभ्य नहीं है, और जिसको अपनी किताबों को यथास्थान रखना नहीं आता आप जानना चाहिए सभ्य नहीं है, और जिसके घर में चप्पलें और दूसरी चीजें और बर्तन यथास्थान रखे नहीं रखे जाते वो सभ्य नहीं है, ये मानना चाहिए। और सभ्यता का शिक्षण हमको सफाई से शुरू करना चाहिए, और सफाई में शुरू करके गांव में ऐसी समितियां बनानी चाहिए, ऐसे वॉलंटियर भर्ती करनी चाहिए, और ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहिए कि व्यक्ति को न केवल अपना घर बल्कि अपने पड़ोस का घर और अपनी गली कूचे एक आध घंटे समय निकाल के साफ करनी चाहिए। और जो गोबर जानवरों का गोबर ऐसे ही फेंक दिया जाता है, धूप में डाल दिया जाता है, उसके कंडे बना के जला दिए जाते हैं, और राष्ट्र के सोने और हीरे जैसी कीमती चीज को नष्ट कर दिया जाता है, उसके लिए समझा जाना चाहिए। छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाए, उन गड्ढों में जानवरों का गोबर जमा किया जाए, उसके ऊपर कंपास्ट के ढंग से ऐसा बढ़िया खाद बनाया जाए जो सोने की बराबर है और सोना उगा सकता है हमारे खेतों में से, और वो गोबर झाका था पड़ा रहता है गली गली मोहल्ले मोहल्ले दरवाजे दरवाजे पर कीचड़ फैलाता रहता है, उसको वहां स्थान बनाया जाए, क्या ये सेवा नहीं है? हाँ ये सेवा है। और मनुष्य जो अपनी टट्टी जहाँ तहाँ फेंकते रहते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी स्त्रियां निकलती हैं और गांव की दीवारों की सारी टट्टी करनी बैठ जाती हैं, और गांव गांव के आसपास का वातावरण इतना गंदा रहता है कि मैं क्या कहूँ आपसे, इसकी सफाई करने के लिए उस तरह के पखाने ड्रेनेज टाइप के पखाने बनाए जा सकते हैं, उसमें गड्ढा खोला जा सकता है, उस पर लकड़ी का एक ढांचा खड़ा किया जा सकता है, लोग उसमें टट्टी जाए मिट्टी भर दें, फिर खेत में दूसरे हिस्से में गाड़ दिया जाए खड़ा कर दिया जाए, लोग बाग टट्टी जाए और चारों से उसके ढांचे में उसकी शर्म भी इज्जत भी बनी रहे, स्त्री और मर्द जहाँ तहाँ नंगे वाले बैठ जाते हैं और आदमी निकलते रहते हैं और दूसरे लोग निकलते रहते हैं और नंगे वाले उनको देखते रहते हैं, किसी का पिछला हिस्सा दिखता है किसी का अगला दिखता रहता है, शर्म आती है और एक बड़ी डूब मरने की बात है। इस सब बातों को आसानी से क्या दूर नहीं किया जा सकता क्या? हाँ सर, एक दो घंटे मेहनत करने से सब बातें बड़ी आसानी से हो सकती हैं। क्या पेशाब घर घरों में नहीं बन सकते? हाँ हर जगह बन सकते हैं, लोग वही नहाते हैं उन घरों में पेशाब करते हैं, गलियों में बच्चे सब पेशाब कर देते हैं और रात को उठते हैं और सब गली में पेशाब पेशाब की लकीरें बनी पड़ती है और सवेरे बदबू आती है, किसी का पेशाब दूसरे को बीमारी भी लगा सकता है। छोटे पेशाब घर हर जगह बन सकते हैं और उसमें गिट्टी डाल करके चूना डाल के ऐसे सूखने वाले गड्ढे कहते हैं, हर जगह बन सकते हैं, काम की सफाई भी दे सकती है, शोभा भी दे सकती है और इज्जत भी दे सकती है और आदमी को सुविधा भी दे सकती है। टट्टी घर ऐसे भी बन सकते हैं जिससे कि मनुष्य का मल खेती की बाड़ी के काम आ जाए और खाद का काम आ जाए, और इसके साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आदमी के हाथ में एक छोटी सी खुरपी लेकर के एक हाथ में लोटा और एक हाथ में खुरपी लेकर टट्टी जाए करे, क्या क्या बिगड़ता है? खुरपी में कितना वजन होता है? जहाँ जाए गड्ढा खोद ले, गड्ढा खोद ले, गड्ढा खोद के उस गड्ढे पर टट्टी करे, उसके बाद मिट्टी डाल दे, खाद भी बन जाएगा, गंदगी भी नहीं फैलेगी और गांव की अशोभनीयता भी नहीं रहेगी और एक सुसंस्कृतता भी बनी रहेगी। इस तरह के आंदोलन यानी कितने आंदोलन है जो खड़े किए जा सकते हैं। इन सब बातों के बारे में सत्सूत्री योजना अपनी है, उसमें यानी कितने किस्म के 100 किस्म के चीजों को बताया गया और ये बताया गया है कि सार्वजनिक सेवा के लिए अनेक काम वाले पड़े हैं, भिखारियों को से काम ले लेना, अपंगों को काम देना, यानी कितने काम हैं। अगर आदमी के मन में सेवा की वृत्ति हो तो हर जगह शिक्षा से लेकर के गृह उद्योगों तक और सफाई से लेकर के लोक शिक्षण तक और संगीत से लेकर के यानी कितने काम तक ऐसे हैं जो रचनात्मक कार्यों की श्रेणी में गिने जा सकते हैं, और सेवा बुद्धि जिनके अंदर है वो अपनी सेवा भावना को चरितार्थ करने के लिए थोड़ा समय इसमें लगा सकते हैं, संपन्न आदमी थोड़ा पैसा दे सकते हैं, लोगों का थोड़ा थोड़ा धन और लोगों का थोड़ा थोड़ा श्रम यदि मिलने लगे तो संतान के आधार पर यानी हम क्या से क्या खड़ा कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, ग्राम पाठशालाएं बना सकते हैं, पंचायतें बना सकते हैं, और यानी क्या से क्या खड़ा कर सकते हैं जो समय हमारा गप्पों में नष्ट हो जाता है, अगर हम गप्पों वाली और आराम और हराम खोली वाली समय को ठीक तरीके से उपयोग करना सीख पाए और सेवा की बुद्धि विकसित कर पाए तो हमारा समय वो कार्य कर सकता है जो कि दूसरे देशों ने किया और वो समर्थ कहलाए। गवर्नमेंट के कामों देखने से काम चलने वाला नहीं है, हमको स्वयं अपने अपने कदमों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपनी सेवा बुद्धि के द्वारा राष्ट्र का नया निर्माण करना पड़ेगा। जिन लोगों ने ज्ञान पाया और ज्ञान सीखा उसकी परीक्षा यही है, क्या सेवा की बुद्धि प्रकट उनके अंदर हुई, और सेवा की बुद्धि को कार्यान्वित करना उन्होंने शुरू किया तो समझना चाहिए कि इनकी इनका ज्ञान सीखना ठीक, रामायण पढ़ना ठीक, प्रवचन करना ठीक, और सेवा की बुद्धि नहीं आई तो समझना चाहिए कि केवल ज्ञान तो सीखा पर बीज तो बोया पर कोई पौधा उत्पन्न न हो सका। हमको अपना ज्ञान को सार्थकता की ओर और हमारे ज्ञान को कर्म की ओर दिशा देनी चाहिए और हमारे ज्ञान को कर्म में अर्थात सेवा में विकसित होना चाहिए। समाप्त। ओम जो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।